परम भागवत श्रद्धया श्री किशोरी जी भगवत परायण सुधर्मनिष्ठ सतीमा एवं उपस्थित महान भाव तथा भाई और बहन, आज आपके समारोह का, इस बार के समारोह का ये आखिरी दिवस है और प्रातःकाल की बैठक भी आखिरी बैठक है। हम लोग जीवन संबंधी चर्चा करते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। अब प्रश्न यह है कि सचमुच क्या हमारी मांग है, उसके लिए हमें क्या करना है। इन दो बातों पर ही सारे समारोह का सार निर्भर है। ऐसी चीज जो सभी को मिल सके और सभी को पसंद आए, जिसे कभी किसी को अरुचि न हो, देने से घटे नहीं, पाने से तृप्ति हो नहीं, तो ऐसी चीज एकमात्र प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व से कभी किसी को अरुचि नहीं होती, प्रेम देने से कभी घटता नहीं, घटता ही नहीं, यही बात नहीं, क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित। आप कहें कैसे? तो निवृत्ति काम की होती है, पूर्ति जिज्ञासा की होती है और प्राप्ति प्रेम की होती है। तो काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की प्राप्ति, ये मानव मात्र का अपना लक्ष्य है। अब प्रश्न ही उत्पन्न होता है कि काम की निवृत्ति कैसे होती है, तो कहना पड़ता है एकमात्र सत्संग से होती है। सत्संग अर्थ क्या है? जो असत है उसको अस्वीकार करना और जो सत है उसको स्वीकार करना। यहां असत क्या है इस संबंध में मानव शासन का दृष्टिकोण क्या है, तो वो ये नहीं है कि आप संसार को असत मानिए, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि सत मानिए। क्या है कि हमारा और संसार का जो संबंध है वो असत है, और ये जो असत है ये प्राकृतिक नहीं है, ये ईश्वरी नहीं है, ये हमारी अपनी भूल से उत्पन्न हुआ है कि हमने मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, अथवा आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक सर्वसमर्थ प्रभु को स्वीकार नहीं किया, ये भी असत है। और ये जानते हुए कि दूसरे लोग हमारी सहायता करें, सहयोग करें, और हमने दूसरों की सहायता सहयोग नहीं दिया, ये भी असत है। संसार कैसा है इस संबंध में एक निर्णय नहीं है, अनेक मत हैं। परमात्मा कैसा है इसका विवेचन अनेक प्रकार से है। तो उस चर्चा में हम नहीं जाते, हमें केवल ये निवेदन करना है कि संसार से संबंध जोड़ना और परमात्मा से संबंध न जोड़ना और दूसरों की सेवा सहायता न करना, ये जरूर असत है। इसी असत को अपने जीवन में से निकाल देना है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, परमात्मा जैसा है वैसा ही रहेगा, और मिला हुआ बल सदैव किसी के पास नहीं रहा न रहेगा। उससे अपना कोई मतलब नहीं। अपने प्रयोजन केवल इतनी बात से है, क्या आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, संसार से संबंध नहीं रखेंगे, परमात्मा से संबंध जोड़ लेंगे। यह एक विचारणी बात यह है कि संसार से संबंध रखना और न रखना और बात, और सेवा न करना बिल्कुल गलत बात। संबंध तोड़ दो, सेवा मत छोड़ दो, आखिर करोगे क्या? अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो शरीर का उपयोग क्या होगा, योग्यता का उपयोग क्या होगा, वस्तु का उपयोग क्या होगा? मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का उपयोग ही है किसी न किसी की सेवा करना। और किसकी सेवा करना? जो निकटवर्ती है, जिनके साथ रहना पड़ता है, जो हमारे साथ रहते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं उनकी सेवा करना। मुझे अपने बचपन की एक भूल मालूम है, और वो भूल ये है कि मैं घर वालों का तो बात न सुनूं और गांव वालों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करूं। क्यों? ये जो घर वाले जो होते हैं ना, ये आसानी से मान नहीं दिया करते, ये तो अपना अधिकार न मानते हैं। इनके मन में ये कभी नहीं आती कि हमारे संबंधियों ने हमारे साथ सेवा उदारता की है, वो तो ये सोचते हैं ना कि वो तो उनको करना ही चाहिए था, और न करने पर बिगड़ते हैं घर वाले, ये नियम है। तो मैं मान पाने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दूसरों लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता और घर वालों के साथ कटु व्यवहार करता। ये जब मुझे पता चला कि घर के लोग तो मुझको ना पसंद करते हैं, बाहर के क्यों पसंद करते हैं, तो मुझे बड़े सोचने पर यह पता चला कि सचमुच घर वालों की मैंने सेवा नहीं की, आदर नहीं दिया, उतना प्यार नहीं दिया, उनकी ममता नहीं छोड़ी, उन पर से अधिकार नहीं हटाया, और बाहर वालों का काम किया केवल मान के लिए। और वो बहुत दिन तक मेरे जीवन में कमजोरी रही, यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जो मैंने भाग लिया, तो यही सोच कर लिया कि शहीदों की कब्र पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो महान भाव, बहुत गंभीर बात है, बहुत विचारणीय बात है। जिस जो निकटवर्ती प्रियजनों की निष्काम भाव से अधिकार छोड़ के सेवा नहीं कर सकता, वो सचमुच सेवा नहीं कर सकता। ये पारिवारिक जीवन क्या है? ये सेवा की ट्रेनिंग है। ये बंधन नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन हम बंधन कब बना लेते हैं कि स्वयं तो सेवा करते नहीं और दूसरों पर अधिकार मानते हैं, और दूसरे जो लोग सेवा करते हैं वो उसको आज के लिए एक रवैया पड़ गया है। बड़े बड़े पद बने हैं महाराज, बड़े गीत गाए लोगों ने कि साहब माता पिता बंधु दारा पूरी तरह से सुख के भोगी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या अगर किसी स्त्री ने अपने पति को सुख दिया तो क्या पति के बदले में स्त्री को सुख नहीं मिला? क्या राय? सुख का आदान प्रदान है कि केवल सुख भोगी है? आदान प्रदान है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वैराग्य आया और सबसे पहला काम किया कि घर वाले बड़े नालायक। ये आज के साधकों की दशा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लायक हैं कि नालायक हैं ये तो बोझाने जो हैं, लेकिन अपना काम क्या था? अपना काम तो ये था कि जिनके साथ हम रहते हैं पहले उनकी सेवा कर देते और भीतर से संबंध उनसे तोड़ देते। अब ये बड़ा कठिन पड़ता है लोगों को कि संबंध तोड़कर सेवा करना बड़ा कठिन पड़ता है, और समाज में सम्मान बिना लिए सेवा करना बड़ा कठिन पड़ता है, और पद को स्वीकार किए बिना सेवा करना बड़ा कठिन पड़ता है। तो किसको कठिन पड़ता है? जो सचमुच स्वाधीन नहीं होना चाहता, प्रेमी नहीं होना चाहता, दुख निवृत्ति नहीं करना चाहता, उसको कठिन पड़ता है। नहीं तो महान भाव, हम जिनके साथ रहते हैं जो कर सकते हैं उसके करने से भगवान नाराज हो जाएगा, और न करने से खुश हो जाएगा, तो भगवान हमको ऐसा साथी क्यों देता, ऐसी परिस्थिति क्यों देता? तो मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ मिला है वो सब ईश्वरवादी की दृष्टि से प्रभु का दिया हुआ है, और जब प्रभु का दिया हुआ है तो परिवार की सेवा भी प्रभु की सेवा है, देश की सेवा भी प्रभु की सेवा है। ये नहीं कि एकांत में बैठकर चिंतन करते रहे, वो तो भगवत सेवा है, और कमरे में झाड़ू लगाना भगवत सेवा नहीं है, ऐसा मैं मानता नहीं। जो मानते ठीक है, क्योंकि व्याख्यान में भक्ति का परिचय होता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप प्रेमियों के जीवन को देखेंगे तो ऐसा एक भी प्रेमी नहीं हुआ जिसने प्रियजनों की सेवा न की हो, सभी ने की है। हां, उनसे आशा नहीं रखी, उनसे संबंध नहीं रखा, ये तो ठीक बात है, लेकिन प्रियजनों की सेवा सभी ने की है। क्यों? इसमें एक बड़ा दार्शनिक तथ्य है, और वो दार्शनिक तथ्य यह है कि संबंधियों की अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो पूर्व कृत कर्म जो राग है उनका निवृत्त नहीं होगा। प्रियजनों की सेवा करने से प्रियजनों का राग निवृत्त होता है। एक बार परम भाग देव जी ने हमसे कहा कि गर्मी की छुट्टी में प्रतिवर्ष बिहार में पिता को बाबूजी कहते हैं, मैं बाबूजी के पास जाया करती थी तो मुझे कभी कभी बाबूजी का ख्याल आता है। यद्यपि मैं बाबूजी से आज्ञा लेकर आई हूँ सत्संग के लिए, फिर मुझे ख्याल आता है। हमें ख्याल आता है, एक प्रीत भरा पत्र लिख दिया करो, कुछ वस्तु भेज दिया करो। तो छुटकारा पाने का उपाय क्या है कि जिनसे संबंध जोड़ा था उनकी सेवा कर दो। एक सज्जन हमारे पास आए, हमारा क्या बताएं, मेरे मन में बार बार लड़के का ख्याल आता है। तो मैंने कहा क्या लड़का तुम्हारे साथ नहीं है? तब उन्होंने कहा बड़े दुखी होकर कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और बच्चा ननसाल में रहता है, उसकी नानी पालन पोषण करती है। तो मैंने कहा जिस दिन ख्याल आया करे उस दिन 50 रुपए का निर्णय कर दिया करो। मैंने ये नहीं कहा कि लड़के की ममता छोड़ दो, मैं तो जानता था कि छोड़ सकते ही नहीं, ऊपर से भले दिमाग भर ले, जिससे सुख लिया उसकी ममता आसान है छूटना? आसान नहीं है। जितना सुख लिया उसे कई गुना देकर विचार पूर्वक क्षमा मांगोगे तब संबंध टूटता है, मजाक नहीं है, टूट जरूर जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन है, हमने कहा तुम्हारी चलती क्या, तुम्हारे बाप भी लड़के ख्याल नहीं मिटा सकते। अरे अपना मानोगे और सेवा नहीं करोगे ख्याल मिट जाएगा? ये गुरुओं का ख्याल किसको ज्यादा आता है जो गुरु की बात नहीं मानता, या किसको ज्यादा आता है जो गुरु स्वयं चेला में आ सकता होता है? माफ कीजिएगा मैं किसी भक्ति से नहीं कहता हूँ कोई गुरु महाराज नारायण हो जाए, ये जो चेलों को अपने अपने गुरु का ज्यादा ख्याल आता है वो उन्हीं चेलों को आता है जो गुरु की बात नहीं मानते, और उन्हीं चेलों को आता है जिनका गुरु स्वयं चेलों में आ सकता है। अगर गुरु आसक्त न हो तो चेले में आसक्ति हो जाए? त्रिकाल में भी नहीं हो सकती। गुरु शिष्य का संबंध होता है अनासक्ति के लिए, ये नहीं है कि 10 प्रकार की आसक्तियां तो थी 11वें प्रकार की और नहीं पैदा हो गई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं संसार का ख्याल कब छूटता है? जो संसार की दी हुई वस्तु संसार को दे देता है। जो आज आखिरी दिन है उपसंहार करना था। अथवा संसार का ख्याल किसका छूटता है, इसी पर चलो, जो जीवन में मृत्यु का अनुभव कर देह से स्पष्ट रूप में चिंतन नहीं, सोहम सेवोहम से का चिंतन तो बहुत करते हैं उससे नहीं काम बनता, स्पष्ट रूप से जो देह की ममता को तोड़ देता है देह के रहते हुए, उसको संसार का ख्याल नहीं आता। अथवा किसको संसार का ख्याल नहीं आता, जो बिना देखे भगवान पर अपने को निछावर कर दे। 3 आदमियों का संसार का ख्याल टूट जाता है, जिसने श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु को अपना मान लिया, अपने को प्रभु का मान लिया, उसके जीवन में संसार का ख्याल नहीं रहता। जिसने विचार पूर्वक 3 शरीरों से अपने को असंग कर लिया उसको संसार का ख्याल नहीं रहता। अथवा जिसने पूरी शक्ति लगाकर प्रियजनों की सेवा कर दी उसको संसार का ख्याल नहीं रहता। एक का नाम कर्मी हो गए, एक का नाम ज्ञानी हो गए, एक का नाम भक्ति हो गए। तो मैंने कल कहा था कि आज प्रेमियों की बात करूंगा। तो ये तो उपसंहार हो गया 6 दिन की चर्चा का। अब आप देखिए प्रेमी सतयुग में भी हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए, कलयुग में हुए, हर युग में प्रेमी हुए हैं। ये जो प्रेमी शब्द कहा जाता है ना वो भगवत प्रेमी शब्द कहा जाता है, भगवान के प्रेमी सब युग में हुए। आप देखिए सतयुग में श्री प्रहलाद जी भक्त हुए, कैसे हो गए भक्त? अभी लाल कन्हैया गीत गा रहे थे ना, एक 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 लाइन में भगवान की महिमा बता रहे थे, दूसरी लाइन में अपनी निर्बलता बता रहे थे। आप जानते हैं जिसे अपनी निर्बलता का ठीक ज्ञान हो जाता है, जिसे भगवान की ठीक महिमा पसंद आ जाती है, उसका भगवान से संबंध हो जाता है। बढ़िया डॉक्टर हो स्वयं हो रोगी, संबंध जुड़ेगा कि नहीं जी? रोगी का डॉक्टर से संबंध जोड़ना स्वाभाविक हो जाता है का स्वाभाविक होता है? जी स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही पतित का और पतित पावन का संबंध स्वाभाविक हो जाता है, ऐसे ही चाकर का और ठाकर का संबंध स्वाभाविक हो जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो सचमुच अपनी निर्बलता से पीड़ित होता है और प्रभु की महिमा स्वीकार करता है उसका नाम भक्त होता है। अब आप देखिए प्रहलाद जी के जीवन में क्या है, उन्होंने एक भक्त को देखा जो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, भगवान से व्यथित हृदय करके प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने पूछा तू क्या कर रही है? कर क्या रही हूँ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है कि मेरी असावधानी से बिल्ली के बच्चे जो हैं, तो मैं उस सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु बच्चों की मृत्यु न हो। उससे पहले प्रहलाद ने कभी नहीं सुना था, अपने बाप की महिमा सुनी थी, अपने बाप का ही बोलबाला सुना था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने व्यक्तित्व की महिमा के लिए ही तप किया था। तो जो अपने सुख के लिए तप करता है, जो अपने सुख के लिए जप करता है, उसकी गणना माफ कीजिएगा हिरण्यकश्यप के सूची में आती है, किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा हूं। अपने सुख के लिए किया हुआ भजन ये राक्षसी स्वभाव है, अपने सुख के लिए किया हुआ तप ये राक्षसी स्वभाव है, अपने सुख के लिए किया हुआ दान ये राक्षसी स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है। तो उसने कहा, नन्ना सा बालक था, भोला भाला था, भगवान की लीला है कि ईश्वर के न मानने वालों के ईश्वर भक्त पैदा होता है, ये भगवान की लीला है, ये उनका विनोद है, ये उनकी कृपालुता है। एक बिजनौर में रामावतार शर्मा थे, यूपी की बात है, उन्होंने 2000 पेज की किताब लिखी कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो उन्हीं के घर में लड़का पैदा हो गया जिसने पुनर्जन्म की बातें बता दी, ये भगवान की लीला है, क्या किया जाए। तो प्रहलाद ने कहा कि देख भाई, तेरा जब अभाव खुले तो मुझे बुला लेना, मैं देखूंगा कि देखें भगवान रक्षा करता है क्या। उसने बुला लिया, बच्चे जिंदा निकले। प्रहलाद के मन में ये विश्वास हो गया, माफ कीजिएगा, घर छोड़कर नहीं भागा, बढ़िया गुरु के पास नहीं गया, सत्य का आदर किया। प्रहलाद के मन में ही विश्वास हो गया कि सर्वसमर्थ रक्षक है, कोई सर्वसमर्थ रक्षक है, यही ने प्रहलाद की दीक्षा है। कह रहा है किशोर जी, और कोई दीक्षा नहीं इसने, किसी महात्मा के पास गया, शरण गया के चेला बना क्या, महात्मा से जाके चिपका क्या, सत्य स्वीकार कर लिया। एक बार जो सत्य स्वीकार किया, अब मजबूर है प्रहलाद उसकी स्मृति करने में, जप नहीं किया उसने, याद आती थी बार बार, किसकी, जिसकी महिमा स्वीकार की उसकी, जिसकी महिमा स्वीकार की उसकी याद आती थी। लेकिन कहीं बताओ, अब ये नियम है कि जिसकी याद आती है उसी की चर्चा होने लगती है, उसी का चिंतन होने लगता है। अब प्रहलाद के जीवन में स्वभाव से भगवान की चर्चा होने लगी, चिंतन होने लगा। ये खबर लगी हिरण्यकश्यप को, उसने कहा ये कौन पैदा हो गया मेरे यहाँ जो मेरी महिमा को छोड़कर किसी और की महिमा स्वीकार करता है। अरे हिरण्यकश्यप और कोई नहीं, अपना अहम ही है। आजकल के पति लोग, मैं इतना योग्य आदमी हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, अरे कमाते हो तो क्या करते हो भाई, किस पर एहसान करते हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो अपने अहम के ही महत्व को बढ़ाता रहता है दिन रात, दुनिया उसका मुंह देखना पसंद नहीं करती ईमानदारी से। माफ कीजिएगा महाराज, मजबूरी में भले ही हम कहते तुम बड़े अच्छे हो। तो हिरण्यकश्यप अहम का पुजारी, प्रहलाद उस बिना देखे हुए सर्वसमर्थ प्रभु का पुजारी। अब विचार भेद हो गया, मतभेद हो गया, प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट देना आरंभ कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, प्रहलाद ने भी कभी कष्ट दिया क्या? ये हमने तो नहीं सुना भाई, प्रहलाद ने कभी कष्ट नहीं दिया किसी को, कभी शिकायत की क्या? क्या प्रहलाद ने ये कहा हम तो भक्त हो गए, हमारा बाप नालायक है? आज जरा सा भगवान में विश्वास हुआ तो सबसे पहले बाप नालायक, मां नालायक, कसम नालायक, क्या तरीका है आपका? अरे बाबा, जो भगवान का हो जाता है उसे कोई गैर दिखता है क्या? उसे कोई और मालूम होता है क्या? वो किसी को बुरा समझता है क्या? वो किसी की निंदा करता है क्या? कभी नहीं करता। लेकिन एक बड़ी वीरता की बात है, बड़ी बहादुरी की बात है कि वो प्रेमी संबंध किसी से नहीं रखता, बिल्कुल निर्लेप जीते जी मरा हुआ। क्यों? संबंध सिवाय प्रभु के और किसी से नहीं रखता, महिमा सिवाय प्रभु के और किसी की नहीं मानता, लेकिन प्रभु के नाते सबके प्रति हित कामना रखता है। तो महाराज अनेक प्रकार के कष्ट देने के बाद भी जब प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ, उसकी आस्था नहीं बदली, उसका चिंतन नहीं बदला, उसकी प्रियता नहीं बदली, तो अंत में इतना क्रोध आ गया अहम देवता को, हिरण्यकश्यप को, कि स्वयं चला मारने के लिए। मुझे बता तेरा राम कहाँ है? नन्ना सा बालक कहता है मुझ में है, तुझ में है, खर्ग में है, खम्भ में। यही ना कहा? मेरा राम है। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, सहज भाव से प्रहलाद ने कह दिया, क्या कहा? खम्भ में है। तो नरसिंह भगवान को खम्भ में से प्रकट होना पड़ा। भगवान ये मत समझिए कि दुष्टों के नहीं होते, सबके होते हैं वो, और सबके इन्हों तो भगवान ही नहीं है। अब वो हिरण्यकश्यप को तप काल में ये बर दे चुके थे। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या माना था? दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, जमीन पे न मरूं, आसमान से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, जितना सोच सकता था सब उसने मांगा। अब मरे फिर कैसे? तो भगवान ने कहा ये तो सामर्थ्य मुझ में ही है कि आधा बन जाऊं पशु और आधा बन जाऊं मनुष्य। हैं? नरसिंह का स्वरूप सही है ना, आधा शेर की तरह, आधे मनुष्य की तरह। अब उनने कहा भैया ये तो मैं सब इसके ऊपर दे चुका, तो चलो देहरी पे बैठ के घुटने के ऊपर रख के नाखून से पेट फाड़ दो। उसने ये नहीं कहा था कि मैं नाखून से नहीं मरूं, ये मांगा नहीं था। मांगा था क्या? नहीं मांगा था। तो कोई आदमी, कामना युक्त आदमी कितना ही चतुर हो, कहीं ना कहीं धोखा खाई जाता है। हिरण्यकश्यप भी धोखा खा गया। अब सुनते हैं कि नरसिंह भगवान का इतना तेजस्वी, इतना विशाल विग्रह था कि देवता कांपने लगे, कोई स्तुति करने को राजी न हो, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल अभय था। तो नरसिंह भगवान ने, देखिए प्रभु की महिमा जितनी कही जाए कमी होती है, क्षमा मांगी प्रहलाद से, कहा प्रिय वत्स, हिरण्यकश्यप ने तो यह बड़ा दुख दिया और मुझे बड़ी देर हो गई। अब देखिए जो अनंत है, जो अपार है, जो समर्थ है, आज प्रहलाद के सामने क्षमा मांग रहा है। और अंत में बड़े दुलार से कहा, भैया प्रहलाद तू कुछ मांग ले, तू कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा कुछ मांग ले, फिर भी कहा कुछ नहीं चाहिए, फिर कहा कुछ मांग ले। अब तो प्रहलाद बिगड़ गया। माफ कीजिएगा मैं किसी जाति पक्ष की बात नहीं करता, कहने लगा मैं कोई बनिया हूं क्या? फिर भी भगवान ने कहा भैया प्रहलाद कुछ मांग ले। तो अच्छा मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ ना चाहूं। यहां एक बड़ा दार्शनिक तथ्य है, अपने द्वारा गुणों का संपादन करना और प्रभु की करुणा से गुणों का प्राप्त होना बड़ा फर्क होता है। ये बात प्रहलाद ये जानता नहीं था कि मुझमें कामना है। देखा मैं अगर आप मुझे देना ही चाहते तो मैं ये चाहता हूं मैं कुछ ना चाहूं। अब भगवान ने कह दिया एब मस्तु। जब भगवान ने एब मस्तु किया तब प्रहलाद को ज्ञान हुआ। क्या? अब लगा भगवान पर केस चलाने। महाराज भक्तों ने बड़े बड़े केस चलाए। हाँ कहा बताओ महाराज? बोले हाँ हाँ भैया प्रहलाद, कि आपका बैरी मेरा बाप था कि उसका अभिमान था? तो भगवान को कहना पड़ा कि अभिमान था, तो आपने बाप को मारा कि अभिमान को? अब देखिए बाप की सदगति की कामना प्रहलाद में निकल आई, लेकिन उसमें दिखता था क्या? उसमें नहीं दिखता था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भक्त हुए हैं वे सब हुए हैं किसी भक्त की वाणी में विश्वास करने, भक्तों के शरीर से चिपकने से नहीं हुए। भक्तों के चित्र को दर्शन करने के लिए रखें अलग बात, लेकिन एक बात तो बताओ हमें, किस भक्त ने कहा है कि तुम मेरी शरीर की पूजा करना और भगवान के विग्रह की पूजा मत करना? किसी भक्त ने कहा है तक? किसी भक्त की वाणी है? नहीं है। लेकिन भक्तों ने क्या किया कि उनके मन में केवल ये बात रही कि इनकी कृपा, इनके द्वारा हमें प्रभु का विश्वास प्राप्त हुआ, इसलिए आचार्य पूजन की बात कही गई। लेकिन आचार्य ने क्या कहा? मुझ में विश्वास करो ये कहा कि प्रभु में विश्वास करो ये कहा? बोलो प्रभु विश्वास तो किसी भी भक्त के पास प्रभु विश्वास से भिन्न कुछ और है क्या? जी नहीं है। इसलिए महान भाव प्रभु में विश्वास करो। विश्वास करना है तो प्रभु में विश्वास करो। बोले क्यों? विश्वास करने से संबंध जुड़ जाता है। हमारे जितने संबंध हैं दो ही तरह से जुड़ते हैं, या तो अपनी जरूरत से जुड़ते हैं या विश्वास से जुड़ते हैं। तो प्रभु के साथ संबंध जुड़ता है प्रभु विश्वास से। आपके जरूरत से तो मैं यहाँ एक बड़े सूक्ष्म बात में निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रभु को प्रभु विश्वास अगर किसी और जरूरत से रखोगे ना तो वो साधन रहकर साधन बन जाएगा, और जब साधन रहकर परमात्मा साधन बन जाएगा तो परमात्मा दूर हो जाएगा, जो तुम चाहोगे सो तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ सही परामर्श की जरूरत होती है, सही सलाह की जरूरत होती है कि भाई प्रभु से जो प्रभु में जो विश्वास करो वो प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए करो, प्रभु के से किसी और संकल्प से मत करो। प्रभु विश्वास तो सब कर लेते हैं, बहुत आसान है। एक एक एक, एक बहन की बात है, उनके पति बीमार थे, मुंसिफ थे। किसी ने कहा भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा शुरू हो गई, पति अच्छे हो गए। दोबारा फिर बीमार हुए और फिर पूजा की, पति अच्छे नहीं हुए, मर गए, तो भगवान उठा फेंक दिया। अब तो बेकार हालत हो गए। तो जो परमात्मा से कुछ भी चाहता है वो परमात्मा को कभी पसंद नहीं करता, परमात्मा को वही पसंद करता है जो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता।
रखा है
प्रभु से जो संबंध जुड़ा जाएगा वो प्रभु की मधुर स्मृति और प्रियता जगाने के लिए, ये नहीं कि मुक्ति के लिए, ये नहीं कि भुक्ति के लिए। मुक्ति तो भगवान सबको दे देते हैं बड़ी सुगमता से। क्यों? आपको जो ज्ञान मिला है उसी से मुक्ति होती है, मुक्ति और किसी प्रकार नहीं होती। आपने ज्ञान पूर्वक ममता कामना तादाद तोड़ दिया तो सब मुक्त हो गए। और भोग जो है ये कर्म सापेक्ष है, आपको कर्म सामग्री मिली उससे आपको भोग मिल जाएगा। लेकिन प्रभु प्रेम एकमात्र प्रभु विश्वास से ही मिलता है, और किसी प्रकार प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भक्तों ने हमेशा प्रभु विश्वास की बात कही, प्रभु की आत्मीयता की बात कही। अरे भाई क्यों अधीर होते हो, क्यों बेचैन होते हो? तुम तो प्रभु की जात के हो, तुम्हारा तो प्रभु से नित्य संबंध है, प्रभु तो तुम्हारा अपना है। आप देखेंगे भक्तों ने क्या कहा। भक्तों ने मीरा से कहा प्रभु तुम्हारे पति हैं, भक्तों ने ईसा से कहा प्रभु तुम्हारे बाप हैं, भक्तों ने मोहम्मद से कहा प्रभु तुम्हारे दोस्त हैं, इस भैया ईश्वरा से कहा कि वो प्रभु तेरा बेटा है। तो किसी न किसी प्रकार से प्रभु की आत्मीयता स्वीकार करने की बात समस्त भक्तों ने कही, समस्त आस्तिक दर्शन ने कही। अनेकों कथाओं में ये बात सुनी, अनेकों प्रमाण इस बात के हैं कि जो प्रभु में विश्वास कर लेता है, जो प्रभु से संबंध जोड़ लेता है, जो प्रभु को अपना मान लेता है, जो प्रभु का होने लगता है, होकर रहने लगता है, उसको तीन चीजें मिल जाती हैं बिना मांगे। तीन चीजें, पहले मिलती है निश्चिंतता। क्यों? सर्वसमर्थ में मैंने विश्वास कर लिया, अब चिंता की कौन सी बात। फिर मिलती है निर्भयता, और फिर मिलती है प्रियता। निश्चिंतता में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, निर्भयता से शक्ति का सदुपयोग होता है, और प्रियता से रस की अभिव्यक्ति होती है। तो हर एक भक्त के जीवन में निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता रहती है। अब आप सोचिए त्रेता में, देखिए त्रेता में क्या था। त्रेता में शिवरी जी बड़ी भक्त हुई है, बड़ी ऊंचे कोटि की भक्त हुई है। शिवरी जी की साधना में क्या था जरा बताओ सही। उन गुरु मतंग ऋषि कौन थे? उनके गुरु जो थे मतंग ऋषि, उन्होंने ये कहा कि देख शिवरी तुझे राम मिलेंगे, तेरे आश्रम में राम आएंगे। अब देखिए कहते हैं गुरु भक्ति, शिवरी जी निश्चिंत हो गई, मुझे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। और क्या शिवरी की साधना क्या थी? ध्यान करती थी, जप करती थी, कहीं नहीं लिखा करती। दूसरी साधना ये थी कि जो उनका स्वधर्म था, जो उनका दैनिक कर्म था, उसके अनुसार रास्ता साफ करना, ऋषियों के आश्रम में लकड़ी डालाना। आज के लोग समझते हैं ध्यान करो बैठ के, काम करो
बाधा पड़ जाएगी भजन। बिल्कुल गलत बात। बताओ सिमरी जी ने कौन सा आसन बिठा के मुद्रा काट के धारण किया था और उनके गुरु ने कौन सी मंत्र दीक्षा दी थी? केवल आस्था दी, श्रद्धा दी, विश्वास दिया, सिमरी तुझे राम मिलेंगे। अब आप जानते हैं माँ है ना सिमरी, मैया है ना, तो माँ के मन में जब भाव उठता है तो क्या उठता है कि मैं राम को क्या खिलाऊंगी, क्योंकि माँ तो खिलाने नहीं जानती है। एक दिन लाल कन्हैया की मैया कह रही थी कि एक तो चला गया और ये तो कुछ खाता ही नहीं है, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। कितना मधुर भाव था उस वक्त उनके मन में, कितनी सुंदर वाणी थी, ये तो कुछ खाता ही नहीं है, इसका शरीर तो अच्छा रहता ही नहीं है। तो माँ के प्यार में क्या होता है, कुछ खिलाऊं पिलाऊं अच्छा रहे। माँ कमाई खाना चाहती है? बिल्कुल कमाई नहीं खाना चाहती। तो महाराज सिमरी मैया सोचने लगी जब राम आएंगे तो उनको क्या खिलाऊंगी, तो वो तो ये सोच ही नहीं सकती थी कि बाजार से मिठाई मंगाऊंगी। वो तो जो फल खाती थी ना जंगल के, भीलनी जात की थी, तो जो फल खाए तो जो मीठा लगे तो अपना खाना भूल जाए और राम के लिए जमा करना शुरू कर दे, राम को खिलाऊंगी राम को खिलाऊंगी। सती माँ के दर्शन से तो हमको विश्वास हो गया कि सिमरी का खाना छूट गया होगा जरूर। क्यों? वो तो राम को खिलाने के लिए फल इकट्ठा करती थी। काय के लिए करती थी? राम को खिलाने के लिए, क्योंकि उनका कोई समय निश्चित तो था नहीं। देखिए भगवान के मिलने का कोई समय निश्चित नहीं है, इसीलिए अखंड प्रतीक्षा थी, दिन रात प्रतीक्षा थी। राम आएंगे जरूर आएंगे, क्यों? गुरु भगवान ने कहा इसलिए जरूर आएंगे। और अपना वही सुधर्म पालन करना, कहीं राम आए उनके कहीं कांटे न लग जाए तो रास्ता बुहारना, राम के प्यारे जो ऋषि हैं उनके आश्रम में लकड़ी डालाना और राम के खाने के लिए मीठे मीठे फल जमा करते रहना। इसके समय बताओ तीसरी कौन सी चीज थी? अर्थात सुधर्म का पालन किया, यही सती माँ ने भी किया। मैं सच कहता हूँ सती माँ के जीवन का कोई ठीक अध्ययन करे, तुमने क्या किया? जिस परिवार में रही उस परिवार की सेवा की, सबको सम्मान दिया, सबको आदर दिया, किसी से कोई आशा नहीं की और भगवान में विश्वास किया, भगवान से संबंध जोड़ा और तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सिमरी ने भी यही किया और राम को आना ही पड़ा। और जब राम आए तो सिमरी जी तो सब भूल गई सुधबुद। क्यों? जिसकी प्रतीक्षा होती है और जब वो आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए सब सुधबुद बिसर जाती है। अब राम खुद मांगने लगे, मैया फल दे दो, मैया भूख लगी है। आप जानते हैं भगवान ने स्वयं गोस्वामी जी की वाणी में ये कहा है, हमें पदवत तो याद रहता नहीं, उन्होंने कहा है कि मैया कौशल्या ने बड़े बड़े सुंदर भोजन कराए। और हमारी लता जी जानती हैं सुनैना जी ने बड़ी बड़ी पहुनाई की, और महाराज यहाँ तक पहुनाई की कि मिथिलावासी तो ये कहते हैं कि अभी तो रघुनाथ जी की पहुनाई समाप्ति नहीं हुई, वो तो दूल्हा दुल्हन में निमंत्रण ही खा रहे हैं, यहाँ तक लोग मानते हैं। लेकिन रघुनाथ जी कहते हैं जो स्वाद सिमरी जी के बेरों में मिला वो कहीं नहीं मिला। क्या कारण था? क्या कारण था? सिमरी जी का प्रेम था या सिमरी जी का कोई योग्यता थी? अब विचार तो करो, सिमरी जी का प्रेम था तो देखिए त्रेता में जो भक्त हुए वो भी प्रभु विश्वास को लेकर ही हुए। और महाराज द्वापर की तो क्या कहें, द्वापर में तो जितने भक्त हुए हैं उनमें तीन प्रकार के भाव के भक्त हुए द्वापर में, वात्सल्य भाव के हुए, सख्य भाव के हुए, मधुर भाव के हुए, दास भाव का कोई भक्त श्री कृष्ण के चरित्र में नहीं है। किसी ने श्री कृष्ण को अपना सखा बनाया, किसी ने बेटा बनाया और किसी ने पति बनाया। लेकिन कैसे पति बनाया ये नहीं, खुल्लम खुल्ला नहीं बनाया, यहाँ बड़ा भारी एक रहस्य है। गोपियों का प्रेम क्यों विशेष माना गया? कि वे ये मानती हैं कि वे हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राण बल्लभ हैं, हम पर उनका पूरा अधिकार है, पर खुल्लम खुल्ला उन्होंने पति का सुख नहीं भोगा। ये परकिया भाव, जैसे रुक्मिणी जी का सुखिया भाव है, रुक्मिणी नारे मत हो जाना, रुक्मिणी जी का सुखिया भाव है, खुल्लम खुल्ला कन्यादान हुआ, दुल्हन बन के आई, पटरानी बन के रही। लेकिन गोपियों का तो खुल्लम खुल्ला विवाह नहीं हुआ, किंतु उन्होंने पति मान लिया। यहाँ एक भ्रम होगा लोगों को, बुद्धिमानों को, मैं निवेदन कर दूं आपसे कि जो प्रेम का जो आरंभ होता है वो शांति के बाद दास्य भाव से आरंभ होता है और मधुर भाव पर जाकर समाप्त होता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे संकोच मिटता जाता है और वैसे वैसे भाव बदलता जाता है। श्री हनुमान जी जाहिरा दास हैं, और वैसे हनुमान जी का नाम मालूम उनको दूसरा क्या है? चार शिला। मधुर भाव भी हनुमान जी में है लेकिन आरंभ में जाहिरा दास भाव है। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे संकोच मिटता जाता है और जैसे जैसे संकोच मिटता जाता है वैसे वैसे आत्मीयता दृढ़ होती जाती है। और जैसे मधुर भाव में दास भाव भी है, स्त्री दासी की समान सेवा भी करती है, मित्र के समान परामर्श भी देती है, मैया के समान खिलाती भी है और स्त्री होकर परम प्रेम को प्रदान करती है। इसलिए मधुर भाव में सभी भावों का समावेश है। तो द्वापर के भक्तों की क्या कहा जाए? उन्होंने केवल एक बात सोची। गोपियों ने कहा किसी प्रकार हमारा श्री कृष्ण से संबंध हो जाए, चाहे हमारी बदनामी भले क्यों हो जाए, संबंध हो जाए, हम श्री कृष्ण की हो जाएं। इसी भावना को लेकर उन्होंने अगहन के महीना में जमुना स्नान किया और कायत्री देवी की पूजा की। देखिए प्रेमी लोग जो पूजा करते हैं, यहाँ एक बड़ा गहरा रहस्य है और वो ये है कि या तो सुधर्म का पालन करते हैं या जिससे प्रेम करते हैं उसकी पूजा नहीं करते। आप देखेंगे प्रेमियों ने अधिकतर भगवान शंकर की पूजा की है, भगवान शंकर से प्रार्थना की है कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, कहीं देवी की पूजा की है, कहीं सुधर्म का पालन किया है, परिवार और समाज की सेवा की है। तो साधन दूसरा और साध्य दूसरा, तो बड़ी रहस्य की बात है। और भैया संत मत में किसी किसी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, ये तो किया है साधन और मिला है प्रेम। तो गोपियों ने कहा कि किसी प्रकार हमारा श्री कृष्ण से संबंध हो जाए। अब यह है छिपी हुई बात, ये जो जब एक बार हमने श्रीहरण लीला को जो सुना तो हमको ये बात मालूम हुई। अब श्री कृष्ण की तो स्वभाव ही है कि जो उन्हें अपना मानता है उसे वो अपना मान ही लेते हैं, वो कभी इनकार करते ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये तो मुझको अपना बनाने के लिए, मेरी होकर रहने के लिए ये तपस्या कर रही हैं ब्रज गोपियां। अब देखूं तो सही ये कैसी तपस्या कर रही हैं। तो वो यमुना नहा रही थी, वस्त्र सब बाहर रखे थे, तो श्री कृष्ण वस्त्रों को लेकर पेड़ पर चढ़ गए, बंदर की तरह हमारे नटखट है ना, चढ़ गए महाराज। अब गोपियां बड़ा निहोरे करती हैं, कहती है हे लाला तुम हमको तंग मत करो, हमें जाड़ा लग रहा है, हवा तेज चल रही है, हमारी लज्जा बचाओ, हमारे वस्त्र दे दो। ऊपर से कहता आओ लेने जाओ। क्यों कहते हैं सर? वो देख रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं कि देखो तुम मुझे अपना बनाना तो जानती हो, चाहती हो, पर मुझसे भेद रखती हो, मुझसे पर्दा रखती हो। सब लोग कहते हैं कृष्ण ने बड़ी असली लीला की, लेकिन क्या अजी जनाब, अध्यात्म दृष्टि से वासना रूपी तीर हर लिया, देह का अभिमानी श्री कृष्ण ने हर लिया। क्योंकि देह अभिमान के रहते हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति देह अभिमान के रहते हुए नहीं होती। भगवत चिंतन हो सकता है, भगवत ध्यान हो सकता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति देह अभिमान के रहते हुए होती नहीं कभी। तो अध्यात्म अर्थ तो यह है कि वासना रूपी चीर हर लिया, और जाहिर अर्थ यह है कि बाहर निकल के आओ और अब लगे धर्म का उपदेश करने। तुम नंगी होकर जमुना में नहाती हो, तुम ऐसा करती हो, ऐसा करती हो। जब उन्होंने अपने अंगों को हाथों से ढका तो कहा ऊपर को हाथ करो तब वस्त्र देंगे। मतलब क्या था? देवमान गलाने की बात थी। गोपियों का देवमान गल गया, गल गया। कृष्ण के साथ आत्मीयता सिद्ध हो गई, कृष्ण प्रेम से जीवन भर गया। लेकिन किसी गोपी ने घर का काम छोड़ा हो, वन में गई हो, संन्यास लिया हो, किसी गुरु के पास चिपकी हो, ऐसा तो सुनने में नहीं आता भैया है। लेकिन क्या दशा हो गई? कोई गोपी गैया दूध रही थी, पूछा सकी क्या कर रही है? बोले कन्हैया को दूध के झाग दूंगी। क्या कर रही है? कन्हैया को माखन दूंगी, कन्हैया को ये करूंगी। कोई गोपी का ऐसा काम होता ही नहीं जिस काम से श्री कृष्ण का संबंध न हो जाए। हर काम के साथ श्री कृष्ण का संबंध है, है? तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि ब्रज गोपियों ने इतनी गहरी आत्मीयता श्री कृष्ण से स्वीकार की कि कृष्ण प्रेम ही उनका जीवन हो गया। अब कृष्ण तो बड़े नटखट हैं भैया, उन्होंने कहा अब तो ये बेमन की हो गई, लेकिन अभी तक इनको मेरी समीपता का सुख पसंद है। महाराज, भगवान के महत्व को जानना, भगवान के रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। अब आप सोचिए, श्री कृष्ण कहते हैं मैया यशोदा से, नंद बाबा से, बाबा हमने आपका दूध खाया, दही खाया, माखन खाया, बाबा आप अपनी गैया संभाल लो, हम तो मथुरा जाएंगे, मामा कंस ने बुलाया है। अब महाराज ये सुनना था कि नंद और यशोदा तो इतने अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, कह लगे लाला गैया किसकी थी, ये दूध दही माखन किसका था? अब मैया को देखो, ये नहीं अधिकार, यहां तक अधिकार नहीं है प्रेमियों का। मैया ये नहीं कहती मैं नहीं जाने दूंगी, विलाप करती है और कहती है कोई जा ब्रज में, तो जात कन्हैया रोक है, कन्हैया जा रहा है, ऐसे कोई रोक सके भैया? कोई ऐसा प्रेमी है क्या? मैया यशोदा को अपने प्रेम का भी भास नहीं है। जब ये चर्चा गोपियों ने सुना तो कहती नहीं नहीं, उनकी मैया नहीं जाने देंगी, विशफुल थिंकिंग। फिर भी जब श्री कृष्ण जाने लगे तो सुनते हैं कि रथ के पहियों से आकर गोपियां लिपट गई। श्री कृष्ण में एक बड़ा आकर्षण है। उन्हें कहते हो सखी बात सुनो, बात सुनो, हम परसों आएंगे, परसों। आज तक ब्रज में ये रिवाज है कि परसों शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। एक जगह अमरी यात्रा में एक वृक्ष पर लिखा था, परसों की पिया आमन जो कही, कब आवेगी बैरिन परसों। तो गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर के मन में हमसे अलग रहने की है, तो उन्होंने हट नहीं किया, आग्रह नहीं किया, मथुरा दौड़ी दौड़ी नहीं गई, पीछे पीछे नहीं भागी। क्यों?